नमस्कार भारत, 18 सितंबर दिन शुक्रवार, मैं हूं पंकज प्रियदर्शी। और गहरा हुआ यूरोप में चल रहा शरणार्थी संकट। स्लोवेनिया ने कहा नहीं लेंगे शरणार्थी, तो क्रोएशिया ने कहा उसके सामने भी समस्याएं।
Our capacity is absolutely full. We are asking from them.
प्रधानमंत्री बनने के बाद तीसरी बार आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाएंगे नरेंद्र मोदी। क्या हैं लोगों की उम्मीदें?
5 साल इनका पूरा कार्यकाल देखा जाएगा। अभी तक तो फिलहाल ऐसा कुछ बदलाव बहुत बड़े स्तर पे हुआ नहीं है। हाँ, थोड़ी सी उस बदलाव की एक आहट सुनाई दी है।
बिहार के किशनगंज में एएमयू कैंपस को लेकर उदासीन क्यों हैं सरकारें? सुनवाएंगे ये खास रिपोर्ट, होगी अखबारों की समीक्षा भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार संदीप सोनी से। पूर्वी यूरोप के देश क्रोएशिया ने कहा है कि वो अब और अधिक प्रवासियों को जगह नहीं दे पाएगा। क्रोएशिया ने अपनी सेना से सीमाओं की रक्षा के लिए तैयार रहने के लिए भी कहा है। क्रोएशिया के बाद स्लोवेनिया ने भी प्रवासियों को आगे बढ़ने से रोक दिया है। चिली में जबरदस्त भूकंप आने के बाद सरकार ने देश के मध्य इलाके में इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। बुधवार की रात चिली में 8.3 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसकी वजह से लगभग 10 लाख लोग अपने घरों से विस्थापित हो गए हैं। लगभग 90,000 घरों में बिजली नहीं होने की वजह से अंधेरा छाया हुआ है। यूएस फेडरल रिजर्व ने अपनी मुख्य ब्याज दर ना बढ़ाने का फैसला किया है। 7 साल पहले वित्तीय संकट के समय से ही ये ब्याज दर लगभग शून्य बनी हुई है। फेडरल रिजर्व के प्रमुख जेनेट येलेन ने कहा,
The recovery from the Great Recession has advanced sufficiently far.
आर्थिक मंदी से काफी हद तक छुटकारा मिला है, लेकिन विदेशी बाजारों में अस्थिरता और कुछ अन्य पहलुओं को ध्यान में रखते हुए बाजार में और सुधार की जरूरत है। फेडरल रिजर्व की प्रमुख जेनेट येलेन के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। सीरिया के सरकारी बलों ने विद्रोहियों के नियंत्रण वाले इलाकों पर सिलसिलेवार हवाई हमले शुरू किए हैं। डेरा प्रांत में इन हमलों में कम से कम 15 लोग मारे गए हैं। ब्रिटेन स्थित सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने कहा है कि हवाई हमलों में बैरल बमों का भी इस्तेमाल किया गया है। चरमपंथी होने के संदेह में मिस्र की सेना के हमले में घायल हुए मेक्सिको के 6 पर्यटकों को उनके घर पहुंचाया जा रहा है। लीबिया में हुए इस हमले में मेक्सिको के ही 8 अन्य पर्यटक मारे गए थे। मिस्र के विदेश मंत्री ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच का वादा किया है। अमेरिका के एक जाने माने थिंक टैंक ने कहा है कि सत्ता संभालने के बाद 1 साल बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रेटिंग आसमान चूम रही है और भारत के 2/3 लोग देश की अर्थव्यवस्था की दिशा से संतुष्ट हैं। वॉशिंगटन स्थित प्यू रिसर्च सेंटर की ओर से जारी एक सर्वेक्षण के मुताबिक 87% भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के प्रति अच्छी राय रखते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के प्रमुख जगमोहन डालमिया को दिल का दौरा पड़ा है। इलाज के लिए उन्हें कोलकाता के बीएम बिरला हार्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में भर्ती कराया गया है। 75 वर्षीय डालमिया के स्वास्थ्य के बारे में बीते कई महीनों से अटकलें लगाई जा रही थीं, लेकिन बीसीसीआई ने कभी भी खुलकर इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी। अमरीका की कार बनाने वाली कंपनी जनरल मोटर्स खराब इग्निशन वाली गाड़ियों के संबंध में चल रही आपराधिक जाँच को समाप्त करने के मामले में 90 करोड़ डॉलर का भुगतान करने पर राजी हो गई है। बीबीसी समाचार।
तारीख 18 सितंबर दिन शुक्रवार। नमस्कार भारत में, अभिवादन स्वीकार कीजिए पंकज प्रियदर्शी का। आज कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं यूरोप में चल रहे शरणार्थी संकट से। क्रोएशिया में प्रवासियों को लेकर हुई कार्रवाई के बाद अब स्लोवेनिया ने कहा है कि उसने भी अपने यहां आ रहे शरणार्थियों को रोका है। ये शरणार्थी क्रोएशिया से ट्रेन से स्लोवेनिया आ रहे थे, लेकिन वहां की सरकारी समाचार एजेंसी का कहना है कि इन सभी को वापस क्रोएशिया भेजा जाएगा। इससे पहले क्रोएशिया की सरकार ने कहा था कि अब वो सर्बिया से आ रहे शरणार्थियों को अपने देश में नहीं रख पाएगा। सरकार ने सेना को सतर्क रहने को कहा है ताकि सीमाओं की रक्षा की जा सके। पूरी जानकारी के साथ हैं संदीप सोनी।
सर्बिया से लगने वाली क्रोएशिया की पूर्वी सीमा पर तोबारनिक कस्बे में पुलिस हजारों प्रवासियों से जूझ रही है। यहाँ कभी प्रवासी पुलिस के अवरोधकों को पार करने की कोशिश करते नजर आते हैं, तो कभी पुलिस प्रवासियों को पीछे धकेलती दिखाई देती है। अधिकारियों का कहना है कि हंगरी की ओर से सीमा बंद किए जाने के बाद कम से कम 8,900 प्रवासी गुरुवार को क्रोएशिया में दाखिल हुए हैं। सर्बिया और हंगरी की सीमा पर फंसे मोहम्मद जबार इराक के दियाला प्रांत से आए हैं। वे कहते हैं, मैं किसी से नहीं कहूंगा कि क्रोएशिया जाओ। पहली बात यह कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमें सिर्फ हंगरी के रास्ते के बारे में पता है, बाकी तमाम रास्तों से हम अपरिचित हैं। क्रोएशिया से रास्ता जाता है लेकिन वहां मेरा स्वागत कौन करेगा? शरणार्थी मोहम्मद जबार के शब्द। प्रवासियों की बढ़ती संख्या के बीच गृह मंत्री रेंको ओस्तोजिक ने कहा है कि क्रोएशिया अब और प्रवासियों को शरण देने की स्थिति में नहीं है।
Our capacity is absolutely full. We are asking from them that all countries on the way, on the route, that's mean Greece.
क्रोएशिया के गृह मंत्री कह रहे थे, हमारी क्षमता खत्म हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि रास्ते में पड़ने वाले ग्रीस, मैसिडोनिया और सर्बिया भी प्रवासियों का सम्मान करें। प्रवासियों के मामले में उनकी भी वही बाध्यता है जो क्रोएशिया की है। इसी तरह क्रोएशिया के प्रधानमंत्री जोरान मिलानोविक ने कहा है कि वे प्रवासियों का स्वागत तो करते हैं लेकिन इससे उनके संसाधनों पर दबाव बढ़ने का खतरा भी है। क्रोएशिया के प्रधानमंत्री जोरान मिलानोविक कह रहे थे, हम सकारात्मक और मिलजुल कर चलने वाला रास्ता अपनाएंगे लेकिन हमारी क्षमता सीमित है। मुझे नहीं लगता कि हम अब किसी और प्रवासी को जगह दे पाएंगे। हमारे लिए क्रोएशिया के हित सबसे पहले हैं। क्रोएशिया से आगे बढ़े प्रवासियों के बारे में स्लोवानिया के अधिकारियों ने कहा है कि उन्होंने शरणार्थियों के एक बड़े समूह को रेल मार्ग के जरिए स्लोवानिया से गुजरने से रोक दिया है। इन हालात में यूरोप पहुंचने की कोशिश कर रहे प्रवासी फिलहाल कहीं रेल की पटरियों पर बैठे नजर आते हैं, जहां छोटे छोटे बच्चे माँ के सीने से चिपके हैं या बाप के कंधे पर बैठकर मानो उस रास्ते को समझने की कोशिश कर रहे हैं जिस पर चलकर हजारों प्रवासी बेहतर जिंदगी की चाह में यूरोप पहुंचना चाहते हैं।
दुनिया में कई देशों के हजारों लोग यूरोप में शरण लेने के लिए पहुंच रहे हैं। ये लोग या तो गृह युद्ध से भाग रहे हैं या फिर यूरोप में उन्हें बेहतर जीवन की उम्मीद खींच रही है। पाकिस्तान से भी कई लोग जर्मनी जाने के लिए यूरोप पहुंच रहे हैं। बीबीसी उर्दू के हमारे साथी जावेद सुमरो ने ऐसे ही कुछ पाकिस्तान के लोगों से बात की।
मैं इस वक्त म्यूनिख के मरकजी रेलवे स्टेशन पर खड़ा हूं और ये वो रेलवे स्टेशन है जहां पर मैसिडोनिया से, हंगरी से और बहुत सारे और इलाकों से लोग आकर जर्मनी में दाखिल हो रहे हैं और यहाँ से फिर उनको जर्मनी की मुख्तलिफ काउंटीज़ में भेजा जा रहा है। यहाँ इस वक्त हमारे साथ तीन पाकिस्तानी मौजूद हैं। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइएगा।
नासर अब्बास।
तो बताएं कि आप कहाँ से आए हैं, कैसे पहुँचे हैं?
पाकिस्तान से आए हैं, 3 साल हो गए हैं पाकिस्तान से निकले हुए। पहले ईरान, फिर तुर्की साल रहे हैं, फिर यूनान में जेल में रहे हैं 6 महीने बॉर्डर क्रॉसिंग के चक्कर में। वहाँ से फिर मकदोनिया, सर्बिया, हंगरी, ऑस्ट्रिया, तो अभी तरह 1 महीना हो गया। यहाँ पहुँचे हैं, ये पुलिस वालों के पास गए हैं, ये हमें लेके कैंप में चले गए हैं, वहाँ हमारी फिंगर लिए हैं और तस्वीरें वगैरह ली हैं। उसके बाद एक और कैंप में चेंज किया है, वहाँ से फिर अभी इधर चेंज किया है, साथ ही एक कैंप उधर रह रहे हैं।
तो क्या सोच के आप चल पड़े हैं पाकिस्तान से?
यही था कि बेटर फ्यूचर के लिए हर बंदा सफ़र करता है, हम भी इसी लिए निकले हैं।
तो यहाँ पे कोई बेहतर
उम्मीद है? यूनान में और पिछले मुल्कों से तो बेहतर है काफ़ी सारा। 6 महीने कैद का बता रहा हूँ यूनान में, हम दो बंदे जो हैं उधर रह के आए हैं कैंप में। कैंप नहीं है, जेल है, और देते तो खाना, जिंदा रहने के लिए खाना देते हैं उधर।
आपका क्या नाम?
नावीद।
नावीद
जी हाँ।
तो आप कहाँ से आए हैं?
मैं पाकिस्तान से आया हूँ, ईरान, तुर्की जैसे ये बता रहे हैं, और यूनान में स्टे किया मैंने 8 साल।
क्या करते रहे यूनान में?
उधर यही जो काम जो भी मिलता था कर लेता था। यूनान में वो नहीं देते हैं, पेपर नहीं देते हैं, ये मसला उधर, इसीलिए इधर आए हूँ।
आज फिर वापस यूनान जा रहे हैं, इतनी मेहनत करके वापस आए हैं?
बस इधर आए हूँ। हर आदमी की किस्मत एक जैसी नहीं होती, तो मेरी किस्मत में मेरा ख्याल से इधर और दाना पानी नहीं है।
तो यहाँ आपको कितना अरसा हुआ है?
22 दिन हो गए हैं।
तो आप पछता रहे हैं पाकिस्तान से निकल गए?
नहीं, मैं पछतावा नहीं है, आए हैं, कुछ काम किया है, पैसे कमाए हैं, घर के हालात भी ठीक हुए हैं, खुद भी ठीक हूँ।
آپ کہاں سے آئے ہیں, کیا ہے آپ کا نام؟
پاکستان سے آئے ہوں, میرا نام محسن ہے, محسن رشید. پاکستان سے آئے ہوں ایران, ایران سے ترکی, اور ترکی سے یونان میں آ گئے. تقریباً 6 ماہ سزا کاٹی ہے ادھر, سزا کاٹی ہے یونان میں. یونان سے پھر اسی طرح سربیا, مقدونیا, ہنگریا, آسٹریا, پھر اسی طرح ادھر پہنچی ہے. جب اسٹیشن پہ آئے تو پولیس والوں نے پکڑا ہے.
تو آپ کے گھر والوں کی کیا حالت ہے وہاں پہ, کیا ان کی سوچ ہے, بات کرتے ہیں آپ سے؟
پریشان بات کرتے ہیں, سوچ انہوں نے کیا سوچنی ہے, جب بچے باہر کہیں جیل میں ہوں, کہیں سزا کاٹ رہے ہوں, تو گھر والوں کا کیا حال ہوگا؟
مطلب آپ سے کہیں گے وہ کہ جی آپ کو ہم کیوں دیں یہاں پہ پناہ, آپ کی زندگی کو کیا خطرہ دیں؟
ادھر آنے کا مقصد تو یہی ہے, جب انٹرویو میں پوچھیں گے یہی بولیں گے بھائی غربت ہے ادھر, کام دھندا نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے کھانے کے لیے, تو اس لیے آئے ہیں کیونکہ ادھر کوئی کام بھی مل جاتا ہے, ادھر پیسہ بھی زیادہ ہے. چلو ادھر سے کچھ یورو میں بھیجیں گے, ادھر روپیوں میں چینج ہوتے ہیں تو ذرا سرکٹ ٹھیک ہو جاتا ہے. ادھر کام کر کے اگر ہم سارا دن کام کریں تو 500 روپیہ لیتے ہیں, 400 روپیہ لیتے ہیں, تو اس سے گھر کا چولہا نہیں جلتا ہے.
یہ تھے جاوید سمرو جو جرمنی پہنچے پاکستان کے کچھ لوگوں سے بات کر رہے تھے. اور اب کرتے ہیں رخ بھارت کی اور. پردھان منتری نریندر مودی ایک دن کی یاترا پر آج اپنے سنسدیے شیتر وارانسی پہنچ رہے ہیں. اس یاترا کے دوران مودی کئی کاریکرموں میں حصہ لیں گے. مئی میں ستا سنبھالنے کے بعد نریندر مودی کی یہ وارانسی کی تیسری یاترا ہوگی. نریندر مودی کی اس یاترا پر ہمارے سہیوگی ونیت کھرے نے ستھانیہ پترکار روشن جیسوال سے بات کی.
جی یہ لگ بھگ کاریکرم 8 گھنٹے کا ہے, پہلے یہ کاریکرم 5 گھنٹے کا تھا, لیکن جو انتیم پروٹوکال آیا ہے اس کے مطابق یہ کاریکرم 8 گھنٹے کا ہو گیا ہے. اور سب سے پہلے یہ نریندر مودی وارانسی کے ایئرپورٹ پہ آ رہے ہیں, اور وہاں سے یہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے کینٹونمنٹ ایریا میں جو ملٹی پرپز گراؤنڈ ہے وہاں پر وہ آئیں گے, اور وہاں پر رکشے والوں سے ملاقات خاص طور سے کریں گے, اور اس کے بعد وہ رکشے والوں کو رکشا اور تمام جو ٹھیلے ہیں وہ ان کو آتم نربھر بنانے والی چیزیں ہیں وہ وترت کریں گے. اس کے بعد نریندر مودی ڈی ایل ڈبلیو کے گیسٹ ہاؤس میں جائیں گے, اور وہاں پر ڈی ایل ڈبلیو کے گیسٹ ہاؤس میں وہ کچھ دیر آرام کریں گے, لنچ کریں گے, وبھن سنگھٹنوں کے لوگوں سے ملیں گے اور اپنے پارٹی کے کارکرتاؤں سے بھی ملیں گے. قریباً شام ہوتے ہوتے ڈی ایل ڈبلیو کے میدان میں یہ وبھن جو یوجنائیں ہیں بنارس میں اس کا ادگھاٹن کریں گے, جیسے کہ اور یہ ادگھاٹن ریموٹ کے ذریعے ہی ہوگا. ٹراما سینٹر کا ادگھاٹن بی ایچ یو کے لیے کریں گے, این آئی پی ڈی اسکیم کا ادگھاٹن کریں گے, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ کچھ ودیوت اپکیندر ہیں, رنگ روڈ ہے, ان سب چیزوں کا بھی ادگھاٹن پردھان منتری نریندر مودی ریموٹ سے ہی ڈی ایل ڈبلیو کے گراؤنڈ سے کریں گے.
کئی مہینوں بعد نریندر مودی, پردھان منتری نریندر مودی بنارس پہنچ رہے ہیں, اور پہلے بھی کوشش ہوئی ہے لیکن کئی کارنوں سے ایسا نہیں ہو پایا.
جی بالکل, یہ کہنا صحیح ہوگا کیونکہ پچھلے 9 مہینے سے نریندر مودی بنارس نہیں آئے ہیں, اور یہ قریباً چوتھی کوشش ہے کیونکہ لگاتار بارش کی وجہ سے اور طوفان کی وجہ سے ان کا کاریکرم ٹلتا آیا ہے.
اس یاترا کو کتنی اہمیت دی جا رہی ہے جو ستھانیہ وشلیشک ہیں ان کے دوارا؟
بغل کے راجیہ بہار میں بھی الیکشن ہے, اور آنے والے دنوں میں یو پی میں بھی الیکشن آنے والا ہے. بہار چناؤ کو دیکھتے ہوئے شروعاتی پروٹوکال میں بدلاؤ کیا گیا, اور یہاں پر رکشے والوں کو رکشے اور سولر رکشے بانٹنے کا جو ہے کاریکرم بنارس میں رکھا گیا مودی جی کے دوارا. لیکن اس کے پیچھے راجنیتک وشلیشکوں کا یہ کہنا ہے, اور ساتھ ہی جو اپوزیشن پارٹی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ سب بہار چناؤ کو دیکھتے ہوئے کیا جا رہا ہے, کیونکہ بہار کے زیادہ تر جو لوگ ہیں جو غریبی ریکھا کے نیچے جیون یاپن کرتے ہیں وہ بنارس سہت پورے پوروانچل میں آ کے رکشا چلاتے ہیں, تو یہ رکشا وترن کا کاریکرم بہار کے چناؤ کو دیکھتے ہوئے رکھا گیا ہے پہلی چیز. دوسرا, آنے والے سمے میں یو پی میں بھی الیکشن ہے, ظاہر طور پہ اس کی بھی تیاری ابھی سے شروع کرنے میں بی جے پی اور جو بی جے پی کے سنگھٹن کے بڑے لوگ ہیں, اعلی کمان ہیں, وہ کرنا زیادہ بہتر سمجھتی ہے. بہار چناؤ میں بھی اس کا فائدہ ملے گا, اس لیے یہاں پر رکشا وترن کیا جا رہا ہے, اور زیادہ تر بہاری رکشے والے یہاں پہ بنارس میں رہتے ہیں, ان کو اس کا فائدہ ملے گا.
نریندر مودی کی وارانسی یاترا پر روشن جیسوال نے ستھانیہ لوگوں سے بات کی اور پوچھا کہ کیا چناؤ کے بعد کے 16 مہینے میں لوگوں کی امیدیں پوری ہوئی ہیں.
اس سمے میں وارانسی کے ساری منڈی میں ہوں, گول گھر میں, اور یہاں پر کچھ لوگوں کے بیچ میں کھڑا ہوں اور ان سے جاننے کی کوشش کرتا ہوں کہ 1.25 سال کا وقت بیت چکا ہے, بنارس میں کیا بدلاؤ دیکھنے کو ملا, اور مودی جی آ رہے ہیں وارانسی تو کیا امیدیں ہیں؟
ہمارا نام کشور ہے. مودی جی 1.25 سال میں تو ایسا کچھ زیادہ کچھ کر نہیں پائے گا کوئی بھی آدمی, لیکن سمبھاونا یہی ہے کہ وارانسی ساڑی کے لیے وہ आगे कुछ ऐसा कुछ करेंगे कि जिसके लिए मंदे की जो ज्यादा से ज्यादा आते हैं मंदे वो बनारस में नहीं आए और यहाँ की सड़कें हैं, लाइट है, ये सबके ऊपर ध्यान दें।
कुछ खास उन्नति देखने को नहीं मिली है, दाल के प्याज के ये सब रेट ज्यादा है इस समय, जो कि आम आदमी परेशान है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि वो अच्छा काम करेंगे।
5 साल इनका पूरा कार्यकाल देखा जाएगा, अभी तक तो फिलहाल ऐसा कुछ बदलाव बहुत बड़े स्तर पे हुआ नहीं है। हाँ, थोड़ी सी उस बदलाव की एक आहट सुनाई दी है।
इस समय मैं वाराणसी के दशाश्वमेध इलाके में हूँ और इस इलाके के बारे में कहा जाता है कि ये कभी सोता नहीं है, 24 घंटे यहाँ पर शोरगुल और लोगों का आना जाना लगा ही रहता है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मोदी जी से क्या इनको उम्मीदें हैं।
मैं चंदन चौरसिया वाराणसी से बोल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि बनारस में भी वो कुछ ऐसे एमएनसी कंपनी डालें जिससे कि जितने भी एजुकेटेड बच्चे निकल रहे हैं उनको जॉब मिल सके।
मैं अभी सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। जैसा कि मैं देख रहा हूँ बनारस में चीजें पहले के मुकाबले काफी सुधर रही हैं और चीजें वन बाय वन सुधरती चले जाए वो अच्छा है, लेकिन अब ये है कि विकास की जो मतलब रेशियो है वो काफी कम है।
बदलाव क्या है, वो जो योजनाएं कुछ नई घोषणा हुई है और अभी मतलब काम सब पे अभी कागजी रूप से ही दिख रहा है, बाकी जैसा बनारस था वो वैसा ही।
भ्रष्टाचार चरम सीमा पे बढ़ता जा रहा है, गरीबी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और प्याज 80 रुपए किलो बिक रहा है, जो गरीबों की रोजमर्रा चीज है उसको कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पूंजीपति और पूंजीपति हो रहे, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं।
और अब बिहार के चुनाव पर विशेष रिपोर्ट। भारत की राजनीति में मुसलमान सबसे संवेदनशील मुद्दा बने रहे हैं। आरोप है कि राजनीतिक पार्टियों ने उनका वोट बैंक के रूप में बखूबी इस्तेमाल तो किया, लेकिन इस कौम की तालीम और तरक्की पर कोई खास ध्यान नहीं दिया गया। बिहार की राजधानी पटना से करीब 400 किलोमीटर दूर सीमांचल इलाके के किशनगंज में बन रहा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कैंपस इस कड़वे सच को खुद ही बयां कर देता है। नीरज सहाय की रिपोर्ट।
केंद्र में 10 साल चली पिछली यूपीए सरकार बिहार के किशनगंज में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कैंपस 8 साल में भी नहीं बनवा सकी। 2006 में सच्चर समिति की अनुशंसा पर तत्कालीन मानव संसाधन मंत्रालय ने बिहार में एएमयू की कैंपस स्थापित करने की सलाह दी थी। नवंबर 2008 में एएमयू के तत्कालीन कुलपति डॉ. पी के अब्दुल अजीज ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जमीन उपलब्ध कराने को पहली चिट्ठी लिखी। केंद्र सरकार को एएमयू के वीसी से बिहार सरकार को पहली चिट्ठी भिजवाने में 2 साल लग गए। नीतीश सरकार को एएमयू कैंपस के लिए किशनगंज में 224 एकड़ जमीन खोजने और उसका अग्रीमेंट करने में 3 साल लग गए। साल 2014 में हुए लैंड एग्रीमेंट के 2 साल बाद भी न केंद्र सरकार पैसे दे पाई और न ही कोई निर्माण कार्य शुरू हो सका। आखिरकार 2013 में बिहार सरकार के अल्पसंख्यक छात्रावास के 2 भवनों में अस्थायी तौर पर कैंपस की शुरुआत हुई। कैंपस के निदेशक डॉक्टर राशिद निहाल बताते हैं,
बिहार गवर्नमेंट ने 224 एकड़ लैंड एलोकेट किया, तो 224 एकड़ लैंड एलोकेट जो है महानंदा नदी के किनारे है, उसमें से कुछ पोर्शंस जो है मतलब 68 एकड़ हमारे लैंड जो है थोड़ा ये वाटर में है, नदी के इसमें है, लगभग 60-70% काम हो चुका है। का जो अभी कैंपस फिलहाल जो कैंपस चल रहा है वो हलीम चौक पर स्टेट गवर्नमेंट ने ही 2 बिल्डिंग हमें दी है, 2 कोर्सेज हमारे यहाँ चल रहे हैं, बीएड का ये 3रा बैच है और एमबीए का ये फर्स्ट बैच हो रहा है। इसके अलावा जो फंड्स जो मिनिस्ट्री ने एलोकेट किया था उस टाइम, दैट वाज अराउंड 137 करोड़ तकरीबन अमाउंट था, तो वो अभी रिलीज़ नहीं हुआ है और यूनिवर्सिटी ने अपना प्रपोजल भी भेजा है।
दरअसल यूपीए सरकार के नीतिगत फैसले को ज़मीन पर उतरने में 8 साल लग गए। 30 जनवरी 2014 को यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने एएमयू कैंपस की इमारत के लिए पहली ईंट रखी। कांग्रेस के सांसद प्रतिनिधि प्रोफेसर शफी अहमद इसे तत्कालीन यूपीए सरकार की बड़ी उपलब्धि बताते हैं।
यूपीए सरकार की कोशिश से यहां एएमयू जैसी एक अजीम तालीमी इदारे की स्थापना उसका क्याम हो चुका है, तो तालीमी मैदान में भी यहाँ के कांग्रेस के यूपीए की सरकार ने काम किया है।
कैंपस चलाने के लिए एएमयू और इसके केरल कैंपस से मदद लेनी पड़ी। बड़ी मशक्कत के बाद 2013 में 2 विषयों में अकादमिक सेशन शुरू हो सका। एएमयू के किशनगंज कैंपस में देश भर से आए 135 छात्र छात्राएं हैं, लेकिन सीमांचल इलाके का सिर्फ 1 ही छात्र है। इलाके के पूर्व विधायक अख्तारुल इमाम का मानना है कि यूनिवर्सिटी का कैंपस एक जन आंदोलन का नतीजा है। वे निर्माण कार्य और जमीन आवंटन में देरी के लिए राज्य सरकार पर जमकर आरोपों के तीर भी चलाते हैं।
3.5 साल तक सरकार ने जमीन के मामले को रोके रखा और ये न्याय के साथ विकास करने वाली सरकार जो कहती है कि न्याय के साथ विकास करते हैं, सबका समान विकास करने की बात करते हैं। नालंदा के बारे में इनको बड़ी चिंता है, लेकिन इस क्षेत्र में जहां शिक्षा का दर बहुत कम है, पर कैपिटा इनकम कम है, प्लान ज्यादा हो रहा है, गरीब लोग रह रहे हैं, निरक्षर लोग रह रहे हैं, निर्धन लोग रह रहे हैं, उस इलाके के शैक्षणिक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए अलीगढ़ की शाखा को से मिल जाए, आज तक यहाँ की सरकार ने दिल्ली की सरकार को याद दिलाने का काम नहीं किया।
इस साल बिहार विधानसभा के चुनाव में यूपीए एनडीए दोनों मुसलमान मतों को अपनी तरफ करना चाहते हैं। ऐसे में किशनगंज समेत पूरे सीमांचल में एएमयू का अधूरा कैंपस बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकता है। नीरज सहाय, बीबीसी पटना।
किशनगंज में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैंपस को लेकर हो रही है राजनीति। और चलिए अब जान लेते हैं कि देश और दुनिया की किन खबरों पर रहेगी हमारी नजर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र बनारस जा रहे हैं, जहां वे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में बने ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन करेंगे। पिछले साल मई में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी की बनारस की ये तीसरी यात्रा होगी। बिहार विधानसभा चुनावों के लिए समाजवादी पार्टी आज अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करेगी। रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी भी आज ही अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत सिंह राम रहीम की फिल्म मैसेंजर ऑफ गॉड 2 आज रिलीज हो रही है। फिल्म में आदिवासियों के खिलाफ कथित टिप्पणी के विरोध में छत्तीसगढ़ में फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की जा रही है। भारत के विदेश सचिव एस जयशंकर आज नेपाल जा रहे हैं। भारत में नेपाली महिलाओं के साथ कथित बलात्कार और नेपाल में हाल ही में संविधान के मसौदे पर सहमति के लिहाज से भारतीय विदेश सचिव के इस दौरे को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उधर लंदन में आज से रग्बी वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है। पहला मुकाबला इंग्लैंड और फिजी के बीच होगा।
भारत के टेलीविजन एंकर हूं या पाकिस्तान के, खुद बोलने और अतिथियों को चुप कराने में उनकी उस्तादी है। उनकी ये ठसक कि अमेरिका में क्या कीमत हो सकती है। वाशिंगटन डायरी के साथ हैं ब्रजेश उपाध्याय।
जरूरत है अमेरिका में काम करने के लिए भारत के टीवी एंकरों की, पाकिस्तान के हों तो भी चलेगा। कामयाब कैंडिडेट वो होगा जो चिल्ला सके, टीवी पर हो रही बहस में शामिल लोगों को डांट सके, उन्हें बता सके कि नेशन वॉन्ट्स टू नो, जो खुद ही ज्यादा बोले और उन्हें कम बोलने दे। अगर वो लाइव टीवी पर गाली गलौज करवा सके तो उसे शाबाशी की चिट्ठी मिलेगी, और हाथापाई करवा सके तो उसके लिए हर बार अलग से बोनस मिलेगा। इस तरह के एंकरों की जरूरत खासतौर से बुधवार को रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के रेस में शामिल लोगों की 3 घंटे चली टीवी बहस के बाद महसूस की जा रही है। 11 उम्मीदवार एक स्टेज पर हों, उनमें से एक महिला हो, पूरा देश देख रहा हो, और उसके बाद जो बातें याद रखने लायक हैं वो है, मैंने 40 साल पहले गांजा पिया था, माँ मुझे माफ़ कर देना। अरे कितने लोग हैं स्टेज पर, वो जो 11वां है उसे किसने बुला लिया, उसकी रेटिंग तो 1% से आगे बढ़ ही नहीं रही है। एक उम्मीदवार ने एकमात्र महिला उम्मीदवार के बारे में कहा था, उसकी शक्ल देखिए, कहीं से लगता है कि वो राष्ट्रपति बन सकती है। उसके जवाब में महिला उम्मीदवार ने कहा, पूरे देश की महिलाओं ने सुना है कि एक महिला के बारे में किस तरह की बातें कही गई हैं। बयान देने वाले उम्मीदवार का झेंपते हुए जवाब था, अरे तुम तो बहुत सुंदर हो सचमुच। एक उम्मीदवार ने कहा, तुमने मेरी बीवी के बारे में ऐसी बातें कही हैं, माफ़ी मांगो। दूसरा उम्मीदवार, मैंने सुना है तुम्हारी बीवी के बारे में, बहुत ही अच्छी महिला है, लेकिन मैंने जो कुछ कहा था उसमें कुछ गलत नहीं था। अब ये सब बातें मैं हिंदी में सुना रहा हूँ आपको, तो फिर भी थोड़ी सी जान आ गई बहस में। अंग्रेज़ी में तो उन्हें सुनकर हेलो हाउ डू यू डू जैसा लग रहा था। अमरीकी एंकरों में पोटेंशियल तो है, लेकिन उन्हें मौके पर चौका लगाना ही नहीं आता। जब रंग रूप को लेकर बहस चल रही थी तो ज़रा सोचिए अपने देसी एंकर उस मौके को हाथ से निकलने देते, हाथापाई नहीं तो कम से कम कुछ यादगार गालियां तो ज़रूर निकलवा लेते। अब पिछले दिनों भारत के एक टीवी चैनल पर साधु बाबा और महिला ज्योतिषी की क्या शानदार थप्पड़बाजी देखी थी हमने। इसे कहते हैं टेलीविज़न। जर्नलिज्म के स्कूलों में वो वीडियो बार बार दिखाया जाना चाहिए। एंकरों के इस हुनर के बारे में किताबें लिखी जानी चाहिए। यहाँ के अखबार और टीवी वाले तो बस इतने से ही खुश हो गए। देखा कैसे घूरा था उस महिला उम्मीदवार ने उसकी शक्ल सूरत पर बयान देने वाले उम्मीदवार को, उसकी बोलती बंद कर दी थी। और यही वजह थी कि 3 घंटे चली बहस में एंकर नहीं बल्कि उसके पीछे बैठा हैंडसम सा नौजवान ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा। हैशटैग था हॉट डिबेट गाय। बेचारे उम्मीदवार घंटों सज संवर कर आए थे, कैमरे को अपने चेहरे पर कौन सा एंगल दिखाएं उसकी तैयारी की थी, और बात किसकी हो रही है तो हॉट दिखने वाले एक नौजवान की। अपने एंकर कभी होने देते ऐसा? लोग ट्विटर पर उसका नाम पता करने की कोशिश कर रहे थे, और जब नाम पता चला तो एक महिला ने तो ट्विटर पर ही इजहार मोहब्बत कर डाला, कहा मेरे नाम के आगे तुम्हारा सरनेम लग जाएगा तो लगेगा जैसे संगीत पैदा हो रहा हो। इसे कहते हैं बोरियत की इंतहा। गलती किसकी? जाहिर है एंकर की। वैसे बेचारा कोशिश कर रहा था लड़वाने भिड़वाने की, लेकिन ये देसी हुनर तभी आता है जब आप भारत पाकिस्तान के टीवी चैनलों पर काम करें। मेरी सलाह तो उसके लिए यही होगी कि अपनी कंपनी से कहे कि एक साल भारत के योर चैनल, हाँ हाँ वही नेशन वांट्स टू नो चैनल, में काम करने का मौका दिया जाए। वरना अगर एक बार अमरीकी जनता को देसी एंकरों की लत लग गई तो फिर शायद बेचारे को टाटा बाय बाय कहने का भी वक्त नहीं मिलेगा। ब्रजेश उपाध्याय, BBC, वॉशिंगटन।
ब्रजेश उपाध्याय की ये डायरी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। और अब समय है अखबारों की समीक्षा का, संदीप सोनी के साथ। संदीप।
पंकज जी, बिहार के पश्चिमी चंपारण में कल होने वाली राहुल गांधी की चुनावी रैली से नीतीश कुमार ने दूरी बना ली है। अंग्रेजी अखबार द हिंदू की ये पहली खबर है। खबर में लिखा है कि लालू के बाद नीतीश के इस रुख की वजह सीटों का बंटवारा हो सकती है।
हाँ, उनकी बातचीत होनी है। मुझे लगता है इसमें बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, शायद उनकी बातचीत होनी है इसलिए वो टल गया
जी। अगला अखबार हिंदुस्तान टाइम्स देखें। पहली खबर मांस पर प्रतिबंध और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जुड़ी है। खबर में लिखा है कि जैनों के पर्युषण पर्व के दौरान मांस की बिक्री पर मंजूरी की मोहर लगाने वाले बॉम्बे हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से मना कर दिया। इंडियन एक्सप्रेस की भी ये पहली खबर है। इसी खबर को नवभारत टाइम्स ने शीर्षक दिया है, मीट बैन लोगों पर थोपा नहीं जा सकता। दैनिक भास्कर ने इसे रोचक सुर्खी देकर छापा है, लिखा है कि कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, जैसी करनी वैसी भरनी, तू क्यों भय उदास। सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा है कि मन शुद्ध करने वाला मंदिर भी साफ सुथरा हो। सुप्रीम कोर्ट का इशारा उन मंदिरों की तरफ है जहां पर भारी गंदगी होती है। नवभारत टाइम्स में ही दिल्ली में डेंगू के बढ़ते मामले जो हैं आंकड़ों की शक्ल में खबर बनकर छपे हैं, और सुर्खी है उतरा नहीं अस्पतालों का बुखार। अस्पतालों का आलम यह है कि कहीं डेंगू की पहचान नहीं हो पाती तो कहीं भर्ती करने से मना कर दिया जाता है, और जांच के लिए तय कीमत से ज़्यादा पैसे वसूल किए जा रहे हैं।
कल कई टीवी चैनलों पर मैं देख रहा था जो अरविंद केजरीवाल की सरकार ने जो कीमत तय की है 600 रुपये, उससे ज्यादा लोग
मांगे जा रहे
हैं। और ये कह रहे थे कि जैसे ही टेलीविजन का कैमरा देखते थे कहेंगे पैसे लौटा दिए जाएंगे।
और दिल्ली हाईकोर्ट ने इसी मुद्दे पर केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और MCD को नोटिस जारी करके पूछा है कि बताइए डेंगू पर काबू पाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं। अगला अखबार देखें दैनिक जागरण। तो यहाँ पहली खबर की सुर्खी है, दिल्ली में वायु प्रदूषण लेगा लाखों लोगों की जान। अखबार ने यह खबर नेचर पत्रिका में प्रकाशित उस रिपोर्ट के हवाले से छापी है जिसमें कहा गया है कि भविष्य में भारत और चीन दो ऐसे मुल्क होंगे जहां वायु प्रदूषण की समस्या गंभीर से बेहद गंभीर हो जाएगी।
और कार्यक्रम के अंत में अब समय है प्रमुख समाचारों का।
BBC समाचार। पूर्वी यूरोप के देश क्रोएशिया ने कहा है कि वो अब और अधिक प्रवासियों को जगह नहीं दे पाएगा। क्रोएशिया के बाद स्लोवेनिया ने भी प्रवासियों को आगे बढ़ने से रोक दिया है। चिली में जबरदस्त भूकंप आने के बाद सरकार ने देश के मध्य इलाके में इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। US फेडरल रिजर्व ने अपनी मुख्य ब्याज दर न बढ़ाने का फैसला किया है। सीरिया के सरकारी बलों ने विद्रोहियों के नियंत्रण वाले इलाकों पर सिलसिलेवार हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। अमेरिका के एक जाने माने थिंक टैंक ने कहा है कि सत्ता संभालने के एक साल बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रेटिंग आसमान चूम रही है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के प्रमुख जगमोहन डालमिया को दिल का दौरा पड़ा है, इलाज के लिए उन्हें कोलकाता के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल फेडरेशन फीफा के महासचिव जेरोम वाल्क को निलंबित करके छुट्टी पर भेज दिया गया है। BBC समाचार।
इसके साथ ही नमस्कार भारत का ये अंक यहीं समाप्त होता है। स्टूडियो संभाला शाकिर आलम ने, पंकज प्रियदर्शी और संदीप सोनी को अनुमति दीजिए 8 बजे विश्व भारती में आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।